हरे कृष्णा। तो आज के इस 2 अप्रैल के संध्या जागृति कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। अभी अभी हमने श्री गौर पूर्णिमा का सुंदर कार्यक्रम संपन्न किया इसी सभागृह में। तो अभी अगला उत्सव कौन सा है? उसके पहले हनुमान जी के स्वामी का जन्मदिन आता है, इसको रामनवमी कहते हैं। सो हनुमान जयंती और रामनवमी, ये बहुत सुंदर उत्सव अभी इसके आगे आने वाला है। और इस उत्सव के उपलक्ष्य में आप सब लोगों के लिए हरिनाम लिखने की प्रतियोगिता भी होने वाली है, जो मोस्ट प्रोबेबली 11 अप्रैल से 19 अप्रैल तक होगी, 7-8 दिन के लिए, जिसमें आपको नोटबुक दिए जाएंगे और उसमें आपको भगवान का नाम लिखना है और उसको हम गिनेंगे और सबसे ज़्यादा नाम जिन्होंने लिखे होंगे उनको प्राइज़ मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं हरिनाम सप्ताह। तो ये हम प्रभु रामचंद्र जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में करते हैं। और प्रभु रामचंद्र का जन्म जो है वो चैत्र महीने के शुद्ध नवमी के दिन हुआ है। उसके पहले चैत्र शुद्ध प्रथमा आती है जिसमें गुड़ी पड़वा हम मनाते हैं। ऐसे कहते हैं कि गुड़ी पड़वा के दिन ब्रह्मा जी ने इस दुनिया को बनाना शुरू किया, इसलिए उस दिन से साल का गिनती भी शुरू हुआ। और चैत्र शुद्ध नवमी के दिन प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ। प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ त्रेता युग में, सत्ययुग में हुए, और त्रेता युग में भगवान रामचंद्र आए। और उसकी कहानी ऐसी है कि दशरथ महाराज की 3 प्रधान पत्नियां थी, उनको कई सारी पत्नियां थी, बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन 3 पटरानियां थी, एक कौशल्या से पहली, उसके बाद सुमित्रा, उसके बाद में कैकेयी। तो बहुत देर तक, बड़ी उम्र होने तक उनको पुत्र नहीं हुआ। तो उन्होंने ऋष्यशृंग ऋषि के सहायता से पुत्र कामिष्ट यज्ञ किया। पुत्र कामिष्ट का मतलब क्या होता है? पुत्र काम इष्ट, यानी कि पुत्र की कामना से किया हुआ यज्ञ, उसका नाम है पुत्र कामिष्ट यज्ञ। तो ये पुत्र कामिष्ट यज्ञ वो अपने गुरुजनों की उपस्थिति में करते हैं और उस यज्ञ के प्रभाव से यज्ञ में से खीर का प्रसाद उत्पन्न होता है। आज हमने कभी सुना है कि ऐसे होता है? कभी किसी ने यज्ञ किया और उसमें से कोई एक व्यक्ति आए बाहर और उन्होंने आपको एक मटका दिया, उस मटके में खीर थी बहुत सुंदर। लेकिन ब्राह्मणों का बल ऐसा था कि ब्राह्मण लोग यज्ञ करते समय जब मंत्र बोलते थे तो उनके मंत्र के प्रभाव से अग्नि उत्पन्न होता था, उसमें माचिस, रॉकेल, डीजल की जरूरत नहीं पड़ती थी, मंत्र बोला तो तुरंत अग्नि उत्पन्न होता था। और ऐसे बहुत ही श्रेष्ठ ब्राह्मणों की उपस्थिति में, इसमें प्रधान थे ऋष्यशृंग ऋषि, जिनका साउथ इंडिया में पर्वत है ऋष्यशृंग पर्वत, जहाँ पर वो बैठकर तपस्या किया करते थे। तो जब ये यज्ञ संपन्न हुआ तो इस यज्ञ के माध्यम से उनको एक बहुत ही सुंदर मटके में खीर प्राप्त हुई और वो मुनि ने जाकर राजा को दी। राजा को कहा कि इसको आप अपने पत्नियों में बांटो। तो कुछ समय के बाद में पत्नियां सब गर्भवती हो जाएंगी और आपके पुत्र की प्राप्ति होगी। तो राजा इनको अलग अलग पात्रों में बांट कर दे ही रहे थे तो अचानक वहाँ गरुड़ जी आते हैं, मतलब एक पक्षी, गरुड़ पक्षी आता है और जोर से झटक के एक पात्र उठा के लेके जाता है। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं, अरे ऐसा कैसे हुआ, ये तो हमारे मंत्र में किधर बोला नहीं था हमने कि जब बांटेंगे तो पक्षी आएगा। पक्षी का मंत्र बोला था पक्षिम आवाह, पक्षिम यह गच्छ, पश्चिम तिष्ठति, ऐसा कुछ बोला नहीं था उन्होंने। लेकिन भगवान की दिव्य इच्छा से क्या करेंगे, पक्षी तो देखा आकाश में उड़ गया और वो बहुत दूर चला गया। तो बचे हुए जो पात्र थे उन्होंने कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को दी और कुछ समय बाद में वो सब गर्भवती हुई। जो गरुड़ जी था वो एक पात्र लेकर भागा, तो वो कहाँ गया, साउथ इंडिया में गया। साउथ इंडिया में एक पर्वत है अंजनेय पर्वत, अभी तो उसका नाम अंजनेय बाद में पड़ा, लेकिन उस पर्वत पर नरराज केसरी और अंजनी रहा करती थी। और अंजनी भी बड़ी भक्त थी भगवान की, वो तो वानर के शरीर में थी लेकिन बड़ी सिद्ध भक्त थी भगवान की। वो तो केसरी ये वानरों के राजा थे, बड़े वृद्ध थे वो भी, उनका भी पुत्र नहीं हो रहा था। तो उन्होंने अपनी पत्नी उनकी जो अंजनी थी वो तपस्या करने को बैठी थी और बड़ी तीव्र तपस्या कर रही थी। तो उसके हाथ में जाकर गरुड़ जी ने वो पात्र छोड़ दिया और कहा कि इसको आपको खाना है। वो तुरंत उसने ग्रहण कर लिया उसको और वो भी गर्भवती हो गई। तो इस तरह से कौशल्या के गर्भ से चैत्र शुद्ध नवमी के दिन श्री राम जी का जन्म हुआ। इसके और फिर सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण जी का जन्म हुआ। और ऐसे कहते हैं कि राजा ने जो पात्र था पूरा उसको दो भाग में डिवाइड किया, एक कौशल्या को दिया और दूसरा सुमित्रा को दिया। फिर सुमित्रा ने और कौशल्या ने अपने पास जो पात्र था उसको दो में डिवाइड किया, एक अपना हिस्सा और एक अपना हिस्सा कैकेयी को दिया। और कैकेयी को दो पुत्र हुए, हाँ, एक था भरत और एक था शत्रुघ्न। तो ये चतुर्व्यूह कहते हैं उसको, चतुर्व्यूह यानी कि भगवान जब गोलोक वृंदावन में रहते हैं कृष्ण भगवान के रूप में, तो वो सबसे पहले बलराम जी के रूप में प्रकट होते हैं। विस्तार उनका, एक्सपांशन, अवतार, लीला अवतार कह सकते हैं आप। तो बलराम जी जो हैं वो चार व्यक्तियों में एक साथ रूपांतरित होते हैं, विभाजित होते हैं, विस्तारित होते हैं, उसको कहते हैं चतुर्व्यूह। और चतुर्व्यूह में कौन कौन होते हैं? अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव और संकर्षण। संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव, ये चार विष्णु तत्व जो हैं वो बलराम जी के द्वारा प्रकट होते हैं। और यही चार तत्व जो हैं वो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी इनके घर में। तो फिर वो जो गरुड़ ने हिस्सा लिया था उसका क्या हो गया? जो गरुड़ ने हिस्सा लेके गए थे वो अंजनी ने खाया और अंजनी गर्भवती हो गई और अंजनी के द्वारा हनुमान जी का जन्म हुआ। और उस वो अंश जो था हनुमान जी, जिस हनुमान जी जो आत्मा थी वो वायु का विस्तार था, वायुदेव का अवतार थे, आप वायुपुत्र भी कह सकते हैं, वायु का अंश भी कह सकते हैं। तो हनुमान जी का जन्म हुआ किष्किंधा, यानी कि साउथ इंडिया में एक जगह है गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। तो गुंटूर में आप ट्रेन से उतरेंगे तो उसके आगे जाएंगे तो आपको एक जगह मिलेगी हम्पी, और हम्पी बहुत सुंदर जगह है। हम लोग तभी विद्यार्थी थे MBBS के, तभी हम लोग हम्पी में गए थे एक बार, 1990 में गए थे, तो विद्यार्थी तो पढ़ चुके थे उस समय। और उधर आंजनेय पर्वत है, उस पर्वत पर केसरी और अंजनी का निवास था और वहीं पर हनुमान जी का जन्म हुआ है। और वो जो जगह है हम्पी वो इतनी सुंदर जगह है कि आपको वहाँ जाके लगेगा कि कोई बालक ने यहाँ पर पत्थर जो है वो खेल खेल में रखे हुए हैं, ऐसा आपको लगेगा। जितने भी पर्वत है वो सब पर्वत जो है वो चौकोनी पहाड़ के बने हुए हैं, चौकोनी चट्टानों से, जैसे खेल में होता है ना वो क्यूब्स, वैसे होता है क्यूब्स, बच्चों लोग कहते हैं ना क्यूब्स, वैसे साइज के बड़े बड़े पर्वत के चट्टान जो है उससे पर्वत बने। ऐसा नहीं कि भाई ऐसा एक गोल पर्वत बना है उसमें अंदर ही पत्थर और मट्टी सब एक साथ जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं। ऐसे पत्थर फिर उसके ऊपर एक पत्थर, फिर उसके ऊपर एक पत्थर, एक तो एक पत्थर, और ऐसे टेढ़े मेढ़े रखे गए हैं और कोई पर्वत खड़ा है। आपको जाके देखना पड़ेगा कि ये मैं जो कह रहा हूँ वो कैसा दिखता होगा। पूरा गाँव जो है ये ऐसे ही प्रकार के पहाड़ से बना हुआ है। तो कहते हैं कि हनुमान जी ने बचपन में खेल खेल में जो पत्थर यहाँ वहाँ रखे थे, बच्चे लोग रखते ना ऐसे लगोरी खेलते हैं और रखते हैं ना दूसरे के ऊपर, वैसे हुए रखे हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। यानी भाई हनुमान जी की जो कहानी आपको हनुमान जयंती को बताएंगे, अभी हम राम जी की कहानी बताएंगे। हाँ, तो ऐसे एक कथा आती है, ये राम जी के जन्म के बहुत पहले की कथा है। हाँ, तो एक बार दशरथ जी का और शनि देव का युद्ध हो गया। इसको बंद कर सकते क्या? कहाँ से आवाज़ आ रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ऐसा था दशरथ जी के राज्य में शनि देव का कभी प्रभाव नहीं हुआ। जहाँ तक हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं ना, हम पर सबका प्रभाव रहता है, शनि का, राहु का, केतु का, मंगल का, बुध का, चंद्र का, सबके प्रभाव में हमारा जीवन और मन जो है वो बदली होते रहता है। तो एक साइकिल में शनि का काल भी आता है, उसको कौन कहते हैं साढ़े साथी, कौन कहते हैं शनि दशा, कौन कहते हैं शनि महादशा, कौन कहते हैं शनि अंतर दशा, ऐसा बहुत सारा होता है। लेकिन शनि का प्रभाव होता ही है और हर एक कुछ समय के बाद में सबका होने के बाद शनि का नंबर भी आता है, सबका होने का मंगल का नंबर भी आता है। लेकिन शनि का प्रभाव दशरथ के राज्य पर कभी हुआ नहीं। दशरथ जी इतने शुद्ध थे, इतने पवित्र थे, इतने महान थे, राजा राजा होने पर ऋषि के समान थे। तो हमेशा अपने बल से उन्होंने शनि को दूर रखा था कि अयोध्या पर शनि का प्रभाव नहीं होना चाहिए। और कई ऐसे चक्र हो गए जिसमें शनि को एंट्री नहीं मिली। तो एक बार शनि को लगा बहुत चक्र अभी वेस्ट हो गए, अभी मुझे जाना ही पड़ेगा। तो शनि निकल गए अयोध्या पर प्रभाव करने के लिए और दशरथ जी को पता चला कि शनिदेव आ रहे हैं। उन्होंने पूरी अयोध्या की सेना लेकर वो आक्रमण किया शनि को और आह्वान दिया उसको, सावधान, अयोध्या की सीमा के अंदर प्रवेश करने के पहले मुझसे युद्ध करना होगा। और बहुत घनघोर युद्ध हो गया उनका। और शनि तो देवता है, दशरथ तो मानव है, लेकिन फिर भी मानव होने पर भी अयोध्या के राजा दशरथ ने इतना पराक्रम दिखाया कि शनि भी हैरान हो गया। और उनका युद्ध जो था वो जमीन पर नहीं हो रहा था, वो आसमान में हो रहा था। इतना सुंदर और दिव्य युद्ध कर रहे थे वो। तो उस युद्ध में अचानक क्या हुआ कि शनि का बाण लगा दशरथ जी को और दशरथ जी बेहोश हो गए। और आकाश में जो रथ था वो रथ में से वो गिर गए और ऐसे गिरते 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 पृथ्वी पर आ रहे थे। मतलब कितने ऊंचे रथ से निकल गए वो, तो बहुत गति से पृथ्वी पर गिर रहे थे वो। तो उस समय जटायु नाम का जो गीत था बड़ा विशाल था, इतना विशाल था कि वो अगर पंख बिछाए बिना ऐसा बैठा हुआ है तो एक पहाड़ के समान उनका शरीर था। एक जैसे मानो सफ़ेद पहाड़ हो, बहुत ऊंचा ऐसे उसका शरीर था। तो वो पक्षी गीदड़ ने अपना पंख फैलाया, मानो दो शहर को घेर लिया उसने, इतना बड़ा उसका पंखों का विस्तार था। तो उसने क्या किया, देखा कि अरे दशरथ महाराज जी नीचे गिर रहे हैं रथ से बहुत ऊंचाई से। तो बहुत तेजी से पंख फैला के नीचे गया और अपने उड़ाए हुए पंख फैलाए हुए पंख पर दशरथ जी को उन्होंने पकड़ लिया और फिर आराम से वो उनको पृथ्वी पर लेके आया और उनका इलाज किया, दवाई किया, जड़ी बूटी दिया, कुछ सुंघाया उनको और उनको होश में लाया। जब दशरथ जी होश में आए तो उन्होंने कहा कि ये मैं यहाँ कैसे आ गया, कौन मुझे यहाँ पर लेके आया। जटायु कहते हैं कि हमने आपको ले लाया। क्या कैसे लेके आया आपने? उन्होंने कहा आप तो हवा से शनिदेव का बाण का प्रहार सहने के बाद में नीचे गिर रहे थे, तब मैंने आपको आपके नीचे गति से जाकर आपको झेल लिया मैंने और पृथ्वी पर लाया, आपको इलाज किया, आपको होश में लाया। पर कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, लेकिन मुझे वापस जाना है, कहाँ पर है शनिदेव, मैं उनसे युद्ध करना चाहता हूँ। तो दोबारा वो आकाश में उड़को उड़ा के लेके गए, रथ में बिठाकर, आकाश में उड़ते हुए रथ पर बिठाकर फिर शनिदेव को आह्वान किया उन्होंने। तो मेरे से बाण का आघात खाकर बेहोश होकर कोई दोबारा मेरे सामने खड़ा होने की हिम्मत रख सकता है, ये सोचकर शनि प्रसन्न हो गए बहुत। मेरा बाण चोट खाकर बेहोश होने के बाद भी दोबारा मेरे सामने खड़ा होने का साहस कर सकता है, बड़ा वीर होगा आदमी। तो उन्होंने बहुत प्रशंसा की उसकी और कहा हम युद्ध नहीं करेंगे और आपके राज्य में प्रवेश भी नहीं करेंगे, इसके आगे कभी भी आपके राज्य में हमारा प्रभाव नहीं होगा शनि का। तो उस समय दशरथ राजा ने जटायु को एक भेंट के रूप में वादा किया। उसने कहा कि मेरे पास पुत्र तो नहीं है, लेकिन जब मुझे पहला पुत्र होगा ना तो मैं आपको भेंट करूंगा। ऐसे उन्होंने किसको वादा किया, जटायु को वादा किया, पंछी को, जो गीदड़ है। तो चले गए फिर, और उनसे बड़ा प्रेम हुआ, उनका दोस्ती बनी, कि संकट के मौके पर जो काम आता है वही सही मित्र होता है ना। तो इतने बड़े संकट के समय उन्होंने सहायता किया और होश में लाया, और फिर दोबारा खड़े हो गए। तो शनिदेव ने फिर वरदान दिया कि आपके अयोध्या में कभी भी हम अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे। तो जब ये सब ये यज्ञ वज्ञ हुआ और प्रसाद खाया और गर्भवती हुई और जब बालक हुआ, तो उस समय दशरथ जी सुंदर से रामचंद्र को लेकर चलने लगे, सीधा उन्होंने गोद में लिया और चलने लगे। सबको आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा उत्सव का दिन है, इतना आनंद का दिन है, चार बच्चे हुए हैं और एक को उठाकर हमारे राजा चल पड़े। और उस समय देखा कि अयोध्या की सीमा पर कोई भयंकर गिदड़ आके बैठा हुआ है। भाई गिदड़ का आना कभी भी शुभ नहीं मानते हैं। हाँ, गिदड़ कब आता है? जब कोई जानवर मरता है ना, उसका मांस खाने के लिए गिदड़ आता है। तो गिदड़ मतलब मृत्यु का एक वो लक्षण है कि जहाँ पर संहार हो रहा है, लोगों की मृत्यु हो रही है, जानवर मर रहे हैं, आग लगी हुई है, वहाँ पर ये सब गिदड़ लोग आते हैं मांस खाने के लिए। तो इतना बड़ा शुभ घड़ी का समय है, हाँ, दशरथ राजा को इतने दिनों के बाद में पुत्र प्राप्ति हुई है, एक नहीं चार पुत्र हुए हैं, कितना बड़ा उत्सव मनाना चाहिए। लेकिन देखते हैं तो एक आश्चर्य क्या है कि हमारा राजा अपने पहले बालक को लेकर जा रहा है, कहीं किसी को बोलने रहा है, कुछ नहीं, निकल गया। और दूसरा देखा कि अयोध्या की सीमा के अंदर सीमा पर एक बड़ा गिदड़ आके बैठा हुआ है, ये तो बड़े अशुभ बात है। और सब लोग देख रहे हैं आश्चर्य हो चकित होकर, कहाँ जा रहे राजा हमारे? तो बहुत देर तक देखते देखते क्या देखते हैं, महलों के ऊपर जाके देखते हैं, कहाँ जा रहे राजा हमारे? तो देखते जाके वो गिदड़ को मिलते हैं, और कहते ले लो, मैंने जो वादा किया था वो पूरा कर रहा हूँ। सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्या इतना सुंदर बालक रामचंद्र गिदड़ को दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, क्या वादा, क्या बात, क्या है? तो फिर वो जटायु कहते हैं कि डोंट वरी, मैं तो पक्षी हूँ, मुझे मानव के बालकों को बड़ा करने का अनुभव नहीं है, आई डोंट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ रेजिंग ह्यूमन चाइल्ड। तो आप इसको वापस लेके जाइए और जैसे बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं लेने को आ जाऊँगा। ये उनका वार्तालाप होता है। जटायु जी उड़ के चले जाते हैं और फिर दशरथ जी बालक को लेकर फिर अयोध्या में आते हैं। सब माताएं पूछती हैं उनको, क्या हुआ, क्या हुआ, ये ऐसे क्या हुआ, आप कहाँ गए थे? तो ये पूरी कहानी वो अपनी पत्नियों को सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था, तब युद्ध में आप लोग कोई नहीं थे, आपको पता नहीं था, मैंने उनको ऐसा वादा किया था कि मैं मेरे बड़े बालक को उनको दूंगा। तो ये प्रभु रामचंद्र के जन्म के समय की घटना है। तो प्रभु रामचंद्र का जो जीवन है वो एक बहुत ही सुंदर आदर्श व्यक्ति का जीवन है। जैसे कृष्ण भगवान को कहते हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, मतलब एक पूर्ण भगवान पूर्ण शक्ति के साथ में क्या क्या कर सकते हैं उसका भगवान ने सब लोगों को लीला दिखाया। अपार शक्ति, अपार सौंदर्य, अपार कला और सिद्धियाँ और ऐश्वर्य और वैराग्य और ज्ञान और बल, सब अपार रूप में भगवान ने दिखाया। जो जो हम सोच सकते हैं और सोच नहीं सकते हैं वो सब कुछ करके भगवान ने दिखाया। जैसे एक बालक के रूप में एक पर्वत को उठा के दिखाया, सात दिन सात रात, कोई सोच सकता नहीं ऐसा कि बालक पर्वत को उठाएगा, लेकिन भगवान ने सब कुछ किया। एक लपलपाते हुए नाग के सर के ऊपर नृत्य किया, जिसका सर एक भी सर हजार सर थे उसके, एक भी सर जो था वो स्थिर नहीं था, वो अनस्टडी था, ऐसे हिलने वाला था, उसके ऊपर भगवान ने बहुत सुंदर नृत्य किया। ऐसे कोई नहीं कर सकता है, कोई भगवान का अवतार भी नहीं कर सकता है, किसी भगवान के अवतार ने भी नहीं किया है। तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, और जो मानव नहीं कर सकता है वो कई कार्य भगवान ने कृष्ण के रूप में करके दिखाए। जैसे कि उन्होंने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया और सबके साथ वो एक साथ ही रहे, ये कोई कर सकता है क्या? आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, यहाँ तक लोगों को पता है कि भगवान ने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया, लेकिन ये विवाह होने के पहले जब वो वृंदावन में थे 7 साल के बालक के रूप में, तो उन्होंने 3 करोड़ कन्याओं के साथ भी विवाह किया था। इसकी भी कथा गर्ग संहिता में आती है। और अनेक करोड़ों उनकी गोपियाँ थीं जिनके साथ उन्होंने नृत्य किया था रात को। तो ये हम लोग सोचकर हमारा दिल में जलन होती है, अरे हमारे लिए एक ही खाली, उनके लिए 16,108 तो द्वेष उत्पन्न होता है मन में। तो कुछ लोग भी भगवान पर टीका करते हैं, कैसे भगवान है ये, ऐसे हो सकता है क्या, इसके बच्चे को भगवान कैसे बोल सकते हैं, ये तो आम आदमी की तरह है, थोड़ा ज़्यादा बहुत पावरफुल होगा शायद, सिद्धि विद्धि वाला होगा, क्योंकि भगवान का द्वेष हम करते हैं इसलिए हम लोग दुनिया में जन्म लेते हैं। लेकिन प्रभु रामचंद्र जो है उनका एक भगवान वही है, राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, एक युग में राम के रूप में आते हैं, दूसरे युग में कृष्ण के रूप में आते हैं, उसके आगे वाले युग में गौरांग महाप्रभु बनकर आते हैं, व्यक्ति तो वही है लेकिन उनका भाव अलग अलग है, उनका उद्देश्य अलग अलग है, उनका कार्य अलग अलग है, वो दिखते भी अलग हैं और लीला भी अलग अलग करते हैं। तो प्रभु रामचंद्र के रूप में क्या उनकी विशेषता है, मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा का मतलब क्या होता है, जो एक मनुष्य को अपना जीवन चलाने में पालन करना आवश्यक है उसको कहते हैं मर्यादा। एक स्त्री की मर्यादा होती है, एक पुरुष की मर्यादा होती है, एक राजा की मर्यादा होती है, एक पति की मर्यादा होती है, एक पुत्र की मर्यादा होती है, एक भाई की मर्यादा होती है। एक भाई एक व्यक्ति के रूप कितने रिश्ते नाते हो सकते हैं, कितने रिश्ते हो सकते हैं, वो सब रिश्तों में आदर्श व्यवहार कैसे होना चाहिए, वो प्रभु रामचंद्र का होता है मुख्य उद्देश्य। प्रभु रामचंद्र ने अपने जीवन में एक राजा कैसे होना चाहिए आदर्श, हर एक उसका व्यवहार जो है परफेक्ट कैसे होना चाहिए, वो उन्होंने राजा के रूप में दिखाया। फिर एक दशरथ का पुत्र के रूप में एक पुत्र ने कैसा कर्तव्य निभाना चाहिए, वो उन्होंने पुत्र का सर्वश्रेष्ठ कार्य दिखाया। एक लक्ष्मण और शत्रुघ्न भरत का भाई के रूप में कैसा कर्तव्य निभाना चाहिए वो दिखाया। और एक पति सीता देवी के रूप में आदर्श पति का व्यवहार कैसे होना चाहिए, पति के क्या क्या कर्तव्य होते हैं और कैसे कैसे उन्होंने पूरा किया, ये सब रामायण में देखने को मिलता है। उसके बाद में पिता, लव और कुश के पिता के रूप में, एक मानव के रूप में, एक मनुष्य के रूप में सर्वश्रेष्ठ व्यवहार उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया। तो उनकी कई कहानियाँ हैं, मैं एक कहानी आज बताना चाहता हूँ आपको कि प्रभु रामचंद्र कितने दयालु थे और कृपा करने वाले थे। एक राजा के रूप में आपको शायद पता नहीं होगा, पुराणों में ऐसे लिखा गया है कि राजा का मतलब क्या है, समझो अगर राजा के होते हुए किसी के घर में किसी के अकाल मृत्यु बालक कोई मर जाता है तो व्यक्ति क्या करेगा, सीधा जाके दरबार में जाएगा और राजा को पूछेगा कि मेरा बालक कम उम्र में कैसे मर गया, आप जिम्मेदार हो क्योंकि आपके तरफ से कोई पाप हो रहा है इसलिए मेरी बालक की अकाल मृत्यु हो रही है। तो राजा को उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, कुछ व्रत करना पड़ता है उस पाप से मुक्त होने के लिए। वैसे ही एक ब्राह्मण कृष्ण भगवान के दरबार में द्वारका में आया था कंप्लेंट करते हुए कि कैसे राजा हो आप द्वारकाधीश कृष्ण, आपके होते हुए मेरे ब्राह्मण के घर में मेरे बालक की अभी अभी मृत्यु हुई है, मेरे सामने पिता के सामने बालक की मृत्यु होना बहुत गलत चीज़ है, ये राजा के पाप का परिणाम है, तुम्हारे राज्य में कहीं पाप हो रहा है इसकी वजह से मेरे बालक की मृत्यु अकाल समय पर हुई है। तो फिर भगवान, लंबी कथा है वो, भगवान फिर अर्जुन को लेकर जाते हैं क्षीर सागर के पास जहाँ विष्णु के लोक में जाते हैं और वहाँ पर उस बालक की आत्मा को वापस लेके आते हैं और वो ब्राह्मण को देते हैं। एनीवेज वो तो बहुत लंबी कथा है। तो कृष्ण के जीवन के अंदर भी ऐसी कथाएं हुई है और राम के जीवन में भी हुई है। तो समय ऐसा है कि अभी अभी हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता देवी को ढूंढ लिया है और पता चला है कि अयोध्या में अशोक वाटिका में लंका में है, उसको राक्षसियों ने घेर के रखा है रावण के आदेश पर, और उनको ढूंढने के बाद में अंगूठी दिया राम जी का, फिर उन्होंने भी कुछ राम जी के याद के लिए कुछ वस्तु दी उनको, फिर उनको अरेस्ट किया गया, फिर वो दरबार में गए, रावण को चेतावनी दी उन्होंने, फिर रावण ने पूंछ को आग लगाया, फिर हर जगह कूद कूद कर रावण की लंका को उन्होंने जला दिया, पूरा भस्म कर दिया, फिर समुद्र में कूदे और अपनी पूंछ को बुझाया और फिर वो लौट के आए। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में सब लोग हाहाकार मच गए, अरे लगता था तो सामान्य वानर है, लेकिन तो इतना सामान्य वानर ने पूरी लंका को जला दिया। तो फिर सब लोग सतर्क हो गए, एकदम अलार्म हो गए, तो उन्होंने मीटिंग किया, डिस्कस किया कैसे करना चाहिए, अभी युद्ध करेंगे ऐसे होगा वैसे होगा, बड़ा लंबा मीटिंग करते हो सब राक्षस मिलकर, रावण, रावण के सरदार, रावण के पुत्र, सब बड़े बड़े महान सिद्ध राक्षस थे वो, उनके पास बहुत शक्तियाँ थी, मायावी शक्तियाँ भी थी और बहुत भयंकर शक्तियाँ थी। तो वो सब लोग डिस्कस करते रहते हैं, तो उसमें विभीषण जो है वो खड़ा होता है, सब लोग बोल रहे हैं आपने जो किया अच्छा किया, लेकिन ससुर जी बोल रहे हैं मैं दानव कि सीता को लौटा दो, लेकिन वो दरबार में आकर नहीं, वो प्राइवेटली घर में बोलते हैं, तो वो उनको मना कर देते हैं। मंदोदरी पत्नी बोलती है कि देखो ऐसा है, आप सीता को लौटा दो, ये आपने सही नहीं किया है, वो किसी और की स्त्री है और उसका उठा के लाया है, और आपको शाप भी है कि किसी भी स्त्री को जबरदस्ती आप कुछ करेंगे तो आप मर जाओगे, तो आपको सीता देवी का आनंद लेना बिल्कुल नामुमकिन है, अब इसको छोड़ दो। वो भी नहीं सुना उन्होंने। तो उनका राक्षस कुल में चार भाई थे उनके, एक रावण और एक विभीषण और एक कुंभकर्ण, तीन भाई थे सॉरी, तीनों बड़े महान योद्धा थे, महान शक्तिशाली थे, उनका पुत्र भी था इंद्रजीत, वो भी शक्तिशाली था। तो विभीषण लेकिन राक्षस कुल में जन्म लेते हुए भी वो भगवान का भक्त था, ऐसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मतलब क्या, ये सभी लोगों के अंदर एक ऐसा, जैसे चावल में होता ना एक पत्थर, सब चावल सफ़ेद एक पत्थर काला, तो उसको हम लोग उठा के फेंक देते कि भाई चावल के बीच में कोई जगह नहीं है तो बाहर जाओ। तब ऐसे पूरे राक्षसों की मंडली में जो भगवान का द्वेष करते थे, भगवान का क्या कहते हैं उसको, मत्सर करते थे, उनको नहीं मानते थे, उसका शत्रु मानते थे भगवान को, ऐसे सब लोगों के बीच में एक था ये राक्षस का पुत्र विभीषण। विश्रवा ऋषि का पुत्र थे वो, सब लोग ब्राह्मण के पुत्र थे। तो विभीषण का जन्म हुआ ना रावण का और विभीषण का, तो विश्रवा मुनि ने बता दिया था ये सब मेरे ही पुत्र हैं। तो पत्नी को बोलते हैं कि देखो ऐसा है कि तुम्हारे बाकी सारे पुत्र जो है ना वो तुम्हारे सारे कुल का नाश का कारण बनेंगे, लेकिन एक पुत्र जो है वो बचे कुछ राक्षस जाति को बचाएगा और फिर उसका उद्धार करेगा। जब तक ये राजा नहीं बनता है तब तक राक्षस कुल का नाश हो जाएगा एक दिन, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब बाकी सब मर जाएंगे, ये जो छोटा बच्चा है वो राक्षस कुल को नाश होने से बचाएगा, उसके द्वारा ये वंश जो है वो जागृत रहेगा। तो ये विभीषण जो है लंका में राक्षसों के बीच में रहकर भी भगवान विष्णु की पूजा करता था, उसके घर के दरवाजे पर शंख चक्र पद्म गदा का चिन्ह भी था। तो जब ये हनुमान जी घूम रहे थे ना सीता को ढूंढते ढूंढते, तो सब जगह ढूंढ रहे थे, सीता देवी कहाँ सो रही है, कहाँ बैठी हुई है, पता नहीं, ढूंढ रहे सब जगह। तो एक जगह पे लंका में उनको विष्णु के नाम का जप का आवाज़ आया, तो पास में गए देखा तो एक कुटिया है, और कुटिया के अंदर गेट पर शंख चक्र पद्म गदा का लक्षण है, चिन्ह लगे हुए हैं, और अंदर जाके देखते हैं तो विभीषण जी वहाँ पर विष्णु का ध्यान कर रहे हैं। वो कहते हैं अरे आप बड़े अजीब भक्त हो, रावण की लंका में रहकर आपको इतना साहस हो रहा है कि उसके शत्रु का नाम का जप करें, आप तो बड़े महान भक्त हो, बाकी लोग तो नहीं करेंगे ऐसे, यहाँ पर मरने की संभावना है, वहाँ पर कौन करेगा भगवान का नाम का जप, उसका नाम का जप करने से मृत्यु हो सकती है, दंड मिल सकता है मृत्यु का, कौन साहस करेगा, लेकिन आप तो उधर रह के भी कर रहे हो, तो आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ मैं, आप बड़े महान भक्त हो, महान वैष्णव हो। तो वो विभीषण उस सभा के अंदर जब सब लोग जोर जोर से बोल रहे हैं, इंद्रजीत बोल रहा है कि मैं इतना बड़ा वीर हूँ कि मैंने इंद्र को परास्त कर दिया है, ये देवता लोग कौन होते हैं, सबको मैं अकेले निपट लूँगा, इनके सहायता के लिए देवता भी आएंगे राम लक्ष्मण के लिए, तो मैं अकेले ही उनको निपटा लूँगा, आप चिंता क्यों करते पिताश्री, मैं हूँ ना। फिर प्रहस्त है और फिर बहुत सारे उनके लड़के हैं, बहुत सारे अलग अलग पत्नियों के द्वारा उनको लड़के हुए हैं, सब बड़े वीर थे, वो भाई है खर दूषण हाँ त्रिशीर, ऐसे बड़े बड़े राक्षस खड़े होकर बोल रहे हैं जोर जोर से, आप कितना चिंता क्यों करते हैं, आप स्वयं इतने पराक्रमी हैं, आपके सामने वो तुच्छ मानव क्या करेंगे, सीता देवी आपकी है, आप क्यों चिंता करते हैं। तो ये सबका जो मूर्खता का संभाषण सुनता है विभीषण, वो खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि आप लोग ऐसे क्यों बात करते हैं, आपको पता नहीं कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो अधर्म के आधार पर कर रहे हैं। तो बड़ा लंबा संभाषण है, वो समझाते हैं सबको, और इंद्रजीत खड़ा होते हैं और काका के ऊपर चिल्लाते हैं, ए दुर्बल रहो, तुम दुर्बल हो, दुर्बल हमारे काका होने पर भी हमको शर्म आती है आपको काका बोलने में, राक्षस कुल के होने पर भी तुम मानव की तरफ से बात कर रहे हो, दर्पक हो, कमजोर हो, दुर्बल हो। फिर भी वो कहते हैं कि जो अधर्म के ऊपर कार्य करता है वो बलवान होने पर उसका नाश होता है, इसलिए हे भ्राताश्री आप सीता देवी को छोड़ दो, तभी आपका वंश का रक्षण होगा, फिर भी रावण कहता है कि ये व्यक्ति जो है ये हमारे हित में नहीं बात करता है, हमेशा कभी भी हमारे हित में बात नहीं करता, हमारे उल्टी सी बात करता है। तो उस समय वो लात मारकर, क्योंकि वो हाथ जोड़कर पैर पड़कर रावण जैसे बड़े भाई को विनती करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि भैया मैं आपको विनती करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, आप अपने विनाश को बचने के लिए सीता देवी को लौटा दो। लेकिन जैसे ही वो पास में आता है पैर छूने के लिए तो उसको लात मार देता है, और वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाता है ना लात मार पैर को प्रणाम करने के लिए, जैसे ही वो लात मारता है छाती पर उसके, तो वो गोल 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 घूमकर सीढ़ी से नीचे गिर जाता है, उसका मुकुट कहीं गिरता है, वो कहीं गिरता है, चला जाए यहाँ से, लंका में तैरने की जगह नहीं है। तो राजद्रोही है, परिवार द्रोही है, राक्षस कुल द्रोही है, तुझे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, तो भाई है इसलिए तुझे मैं मृत्यु दंड नहीं दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ से चला जाओ। तो उसे बड़ा दुख होता है, मैं उसके हित में बात कर रहा हूँ। उसके साथ चार और होते हैं अधिकारी सरदार, उनको बड़ा दुख होता है, भगवान तो वो सब मिलकर चले जाते हैं। उनके पास में हवा के हवा में उड़ने की शक्ति होती है, कई शक्तियों में से एक शक्ति है वो हवा में उड़ने की। तो वो ऐसे कहते हैं एक घंटा तक जो 100 योजन का अंतर था ना, वो एक घंटा में वो पार कर देते हैं। और यहाँ पर बैठकर समुद्र किनारे भारत के दक्षिण कोने पर राम लक्ष्मण और हनुमान जी, सुग्रीव, जांबुवंत, सब राक्षस, सब हनुमान जैसे वानर सेना के साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे कि क्या करना है अभी। पता चल गया है सीता देवी कहाँ पर है, पहुँचना कैसे, इतना बड़ा सागर को लांघ कर जाना कैसे। तो उतने में ये 5 राक्षस जो है वो आकाश में उड़कर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तो सुग्रीव उनको देखते हैं, पूछते हैं क्या काम है आपका, इधर क्यों आए हो। वो पूरे अलंकार पहनकर, राज वस्त्र पहनकर, शस्त्र धारण करके, तलवार, धनुष, बाण, गदा और चमकता हुआ, देवताओं से भी अधिक प्रकाशमान मुकुट पहन के, ऐसे वस्त्र पहन के वो आकाश में आ रहे हैं, मानो युद्ध के लिए आ रहे हैं, ऐसे शस्त्र को धारण करके आ रहे हैं। तो सुग्रीव बोलते क्या काम है, आप लोग यहाँ पर क्यों आए। तो वो कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र को शरण जाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। तो सुग्रीव को विश्वास नहीं होता है, ये राक्षसों का कोई छल कपट होगा, कोई राक्षस का दूत आया होगा और अभी ही वहाँ पर पहुँचने के पहले ही यहाँ ख़त्म करने के लिए आया होगा। जाते हैं कुटी में, वहाँ पर राम कृष्ण, राम और लक्ष्मण बैठे होते हैं। तो कहते हैं कि राक्षस के 5 जन आए हैं वहाँ पर और वो कह रहे हैं कि हम आपको शरण जाना चाहते हैं। तो प्रभु राम जी शांति से बैठे हुए कहते हैं कि सुग्रीव जी आप तो राजा हैं, आपका विचार क्या है उसके बारे में। तो सुग्रीव कहते हैं कि उनको तुरंत मार देना चाहिए, कि चाहे दूत है या ये है या वो है या किस मूड में आए हैं, क्या कह रहे हैं वो देखना नहीं चाहिए, और राक्षस के शत्रु के पक्ष से आए उनको तुरंत वो हमारे अंदर घुस के कुछ छल कपट करके हमारा विद्रोह करने के पहले, नाश करने के पहले हम उनका खत्म कर देना चाहिए। वो बार बार दोहरा रहे, वो एक्साइट होके एकदम उत्तेजित होकर कह रहे हैं वो। तो फिर जांबुवान को पूछते हैं, जांबुवान कहते हैं कि हमारा भी ये विचार है कि उनको यहाँ पर अंदर जगह देनी नहीं चाहिए, बहुत रिस्की मामला है ना, तो हम अपने अंदर उनको ले लेंगे तो सब कुछ जान लेंगे, वो कौन कौन यहाँ बैठे हुए हैं, क्या क्या है, सब कवर करते रहेंगे वहाँ पर जाके, और युद्ध के समय हम लोग हार जाएंगे फिर इनकी वजह से। तो फिर सबकी सलाह मशवरा होती है और आखिर में भगवान प्रभु रामचंद्र शांति से बैठे हुए हनुमान जी को पूछते हैं कि हनुमान जी आपका विचार क्या है। तो हनुमान जी कहते हैं मैं तो सबसे छोटा हूँ, इन सुग्रीव जैसे बड़े बड़े भाई हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, मैं छोटा हूँ सबसे, लेकिन चूँकि मुझे आपने पूछा है बताना मेरा फ़र्ज है, और मैं मेरे दिल की बात बताऊँगा, जो सही हो गलत हो आप देख लीजिए कैसा है उसका, लेकिन मेरा मत ऐसा है कि ये व्यक्ति के मन में जरा सा भी गलत बात नहीं है, बिल्कुल छल कपट नहीं है, ये प्रामाणिक मन से यहाँ पर आया है, इसको आप शरण दे दो, इससे आपको कोई नुकसान नहीं है, कोई धोखा नहीं है, कुछ नहीं है। सुग्रीव फिर उठते हैं, बोलते अरे हनुमान जी कैसे, आप तो इतने विद्वान हो, इतने आप पंडित हो, इतने स्थिर हृदय हो, इतने बुद्धिमान हो, फिर भी आप ऐसे कैसी बात कर रहे हो। तो उनको समझाते हैं कि जब मैं लंका में गया था ना, तो इतनी बड़ी लंका के अंदर ये एक ही घर था जिसके अंदर ये विभीषण जी महाराज बैठकर इतनी हिम्मत से, इतने साहस से प्रभु का नाम ले रहे थे, ये प्रभु रामचंद्र के अनंत भक्त हैं, ये इंतजार कर रहे हैं प्रभु का दर्शन करने के लिए, इनको तो यहाँ आना ही था, ये तो लीला है भगवान की, उनका जन्म हुआ उस कुल के अंदर रावण के भाई के रूप में, लेकिन हृदय से आपके भक्त हैं वो, और भाई ने ठुकरा दिया है तो वो जानते हैं कि आप ही प्रभु हैं, इसलिए आपके शरण में आए, आपकी सेवा करने के लिए आए हैं, आपका दास बनने के लिए आए हैं। तो प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि मैंने आपका सबका पत्र सुन लिया है, अभी मेरा निर्णय आप सुन लो। वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर मेरे सामने आके कहता है कि मैं आपका हूं, तो मैं तुरंत उसे स्वीकार करता हूं, चाहे वो शत्रु हो या मित्र हो, हित करने वाला हो या अहित करने वाला हो, जो भी व्यक्ति है उसको मैं स्वीकार करता हूं। और क्या कहते हैं, केवल स्वीकार ही नहीं करता हूं, उस व्यक्ति को मैं हौसला देता हूं, उसका उत्साह बढ़ाता हूं, और साथ साथ में उसकी जीवन में जो भी संकट है उससे उसको बचाता हूं। ये मेरा प्रण है एक रघुकुल का राजा होने के नाते, और हे वानरों, हे मेरे मित्रों, आपके सामने बैठकर मैं ये वादा करता हूं, वचन लेता हूं कि मेरे सामने जो भी शरण लेकर आएगा आश्रय मांगने के लिए, कभी भी मैं उनको ठुकराऊंगा नहीं, आश्रय दूंगा, उनकी पूरी तरह रक्षा करूंगा। आगे एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य बोलते हो, वो कहते हैं कि रावण ने मेरी पत्नी का हरण किया है छल कपट से, द्रूर दुष्ट भावना से, हाँ, और हमको इतना दुख दिया है उन्होंने, इतने दिन से हम तड़प रहे, कई महीने से ढूंढ रहे हैं उनको, अब पता चला है कि उन्होंने चोरी किया है मेरी पत्नी को। वो रावण भी अगर मेरे सामने आएगा और कहेगा कि मुझे माफ कर दो, मैं आपकी शरण में आया हूं, तो मैं उसको भी माफ कर दूंगा। इसलिए विभीषण को यहां पर ले आओ और मैं उनको सहारा दूंगा। रावण भी अगर आते हैं, आप सोच सकते हैं, जिसके साथ में अभी युद्ध होने वाला है, वो भी अगर आएंगे तो भी मैं तैयार हूं उनको शरण देने के लिए। ये भगवान है, हा? भगवान का मन कैसा है ना, ये कोई समझ सकता नहीं है। लोग बोलते हैं कि भगवान तो है, वो देवताओं को बहुत तरफ, तो उनकी तरफ से बात करते हैं हमेशा, देवताओं का पक्ष लेते हैं और दानवों को, दैत्यों को, राक्षसों को मार देते हैं, उनको शत्रु मानते हैं अपना और देवताओं को मित्र मानते हैं अपना, हाँ, भक्तों की खाली रक्षा करते हैं, बाकी लोगों की रक्षा नहीं करते हैं। लेकिन भगवान ने सब जगह कहा है, समोहम सर्वभूतेषु, जितने भी जीव हैं उनके लिए मैं समान हूँ। खाली वो जीव मुझको शत्रु मानते हैं कोई, और कोई मित्र मानते हैं, तो फिर मैं उनसे वैसा व्यवहार करता हूँ। ये यथा मम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि, हम जैसा व्यवहार आप करोगे वैसा मैं आपके साथ व्यवहार करूँगा। अगर आप मुझे शत्रु मानते हो तो क्या करूँ, फिर मैं युद्ध करूँगा आपके साथ, अगर मित्र मानते हो तो मित्रता का व्यवहार करूँगा। तो रावण भी अगर अभी शत्रु मानता है मुझे, मेरी पत्नी को उठा कर ले गया है, अभी वो आकर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत किया, मैं आपके शरण में आया हूँ, तो मैं उसको तुरंत माफ़ कर दूंगा और किसी का वध नहीं करूँगा, ये भगवान की मानता है। ऐसा व्यक्ति जो, अभी आप सोच सकते हैं, जिस व्यक्ति की पत्नी का हरण हो चुका है, वो ऑलरेडी परेशान है, दुखी है बेचारा, वो और सब भी वो वनवास में है, उसके बाद अयोध्या की सेना भी नहीं है कि चलो आज सेना का लेकर आक्रमण करेगा तो भी वो जीत जाएगा, उसका प्रण है कि वो किसी से राज्य दरबार की सेना का लाभ नहीं ले सकता, वो ऐश्वर्य का या सेना का या कोई भी राज दरबार की शक्ति का लाभ वो नहीं ले सकता है। असहाय अवस्था में वानरों की सेना का सहारा ले रहा है वो, तो सबसे पहले उसको क्या होगा कि पहले मेरी पत्नी को वापस ला, तो बाकी सब बाद में सोचूंगा, जब सब कुछ ठंडा हो जाएगा फिर मैं ठंडे दिमाग से सोचूंगा क्या करना है। लेकिन प्रभु का जो मन होता है, वो अकेले हो, सबके साथ हो, समान रहता है हमेशा, और हर समय में उनका जो दया का भाव है वो भी समान रहता है। तो हमारे लिए आशा है कि प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि मैं रावण को भी ले लूंगा, माफ कर दूंगा उसको, रक्षा करूंगा उसकी। तो हमारे लिए आशा क्यों है कि हमारे अंदर भी रावण छुपा हुआ है, सबके अंदर। तो दशहरे के दिन हम क्या बोलते हैं कि अंदर छुपे हुए रावण रूपी राक्षस का नाश करना है, वो दशहरे का उद्देश्य है। हमारे अंदर राम भी छुपा हुआ है और रावण भी छुपा हुआ है। रावण बलवान होता है अंदर का, तो हम बहुत खराब दिखाई पड़ते हैं, और जब राम हृदय में उन बड़े हो जाते हैं और रावण कम हो जाते हैं, तो हम लोग भक्त दिखाई पड़ते हैं। इसलिए हम किसको ज्यादा बढ़ा रहे हैं, प्रभु का नाम लेकर प्रभु की भावना को बढ़ा रहे हैं, तो हम वैष्णव बन जाएंगे। प्रभु को भूल कर अगर बाकी सब राक्षस की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे, बना देंगे उसको, तो हम रावण जैसे लगेंगे, राक्षस जैसे लगेंगे। तो ये तुरंत उनको बुला लेते हैं और अपने हीरों से लदे हुए, अंगूठी पहने हुए, दोनों हाथ जमीन पर रखकर भगवान के पैर को छूकर पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं पांचों लोग अपने शस्त्रों के साथ, अंदर तंबू में घुसकर, और कहते हैं कि हम आपके शरण में आए हैं और आपके शरण में रहेंगे और जो भी आपका कार्य है उस पर हम आपको पूरी सहायता करने के लिए आए हैं। तो फिर प्रभु उनको शरण लेते हैं और उनको पूरा 5 ही मिनट के अंदर उनको वादा करते हैं, समुद्र का जल लेके आते हैं और मंत्र कहते हैं और सबके सामने वादा करते हैं कि जब मैं आज मैं वादा करता हूँ कि रावण के साथ में उनके सारे परिवार के सदस्यों का भी मैं वध करूँगा और रावण का राज मुकुट आपको पहनाकर मैं लंका का राजा बनाऊंगा। अभी युद्ध भी शुरू नहीं हुआ है, अभी तो ब्रिज भी नहीं बना है, तो पहुंचने का भी प्लानिंग नहीं हुआ है, लेकिन प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि मैं सबके सामने खड़े होकर वादा करता हूँ कि मैं रावण का और उसके परिवार के सदस्यों का, राक्षसों का वध किए बिना और आपको राजा बनाए बिना अयोध्या को लौटूंगा भी नहीं सीता जी को लेकर। मतलब एक व्यक्ति ने, और एक गुरु जी एक बात भी बोलते हैं, किस पर कैसे विश्वास करें, वो अपने भाई को छोड़कर तुम्हारे पास में आए हैं, तुम्हारे पास कितने दिन रहेगा गारंटी क्या है उसकी, अपना घर का भेद करके इधर आया, वो आपके साथ में कितना दिन रहेगा उसका गारंटी क्या है। मतलब कैसे भी हो, अगर वो एक बार कहता है कि मैं आपकी शरण में आया तो मैं उसको, उसका मन में क्या भी कुछ भी विचार हो, मैं उसको रक्षा करूंगा। जब उसका विचार बदलेगा तो फिर मैं देखूंगा क्या करना है, आज उसको जरूर मैं शरण दूंगा। सबके सामने उसको वादा करते हैं। विभीषण जी रोते हैं बहुत कि कितने दयालु है हमारे प्रभु, हा? अभी भी तो मैं आया हूँ, अभी तो मेरा टेस्टिंग भी नहीं हुआ है पूरा कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ, लेकिन हृदय को जानने वाले प्रभु, क्योंकि विभीषण के हृदय में क्या बात थी ये खुद को पता थी ना, वो तो कपट लेकर नहीं आया था, वो तो रावण जी को बचाने की बहुत कोशिश की उसने अधर्म के रास्ते में चलने से, नहीं माना वो तो फिर वो असहाय होकर आग लौट के आए प्रभु के पास, तो अपने मन में क्या है तो उसको पता ही थी, लेकिन वो उसके मन में जो बात थी वो प्रभु रामचंद्र ने पहचान कर तत्क्षण उसको सहारा दिया, इससे वो बहुत भाव विभोर हो गए और रोने लगे कि मैं तो इतने नीचे नीचे कुल का व्यक्ति हूँ, रावण जैसा मेरा भाई है जो मेरे लिए शर्म की बात है, उसने आपके पत्नी का हरण किया है, तो मैं उसको अभी उसका ध्वंस होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो जब तक जिंदा है वो सब राक्षस कुल का नाश ही करेगा, तो मैं आपके शरण में आया। तो फिर रावण के दरबार के जितने भी सैनिक है, सरदार है, मंत्री है, पावरफुल लोग हैं, सबकी जानकारी और उसी की वजह से प्रभु क्योंकि रावण को मानना नामुमकिन था, लेकिन सब रहस्य की बातें ना, गुपित बातें विभीषण जी उनको बताते हैं, तो वो इतने बाण मारते हैं कि हजारों बार उसके सब सर जो है वो कट के नीचे गिर जाते हैं, मतलब मर गया ना वो, लेकिन नहीं, जितने सर गिरते हैं दोबारा कंधे पर से नए सर उत्पन्न होते हैं, हंसते हंसते आते हैं। तो रामचंद्र प्रभु जी बहुत व्याकुल हो जाते हैं, अरे करूँ क्या मैं, कितने बाण चलाए मैंने, कितने सर काट कर कितनी बार गिरा दिए, फिर नए नए सर आ रहे हंसते हंसते हुए। तो विभीषण जी कहते हैं कि उनकी जो शक्ति है ना वो हृदय में अमृत के डिबिया में रखी हुई है, उसके हृदय में वो कुपी है, कुपी अमृत की, इसलिए वो सर जितने काटेंगे उतने ऊपर आते रहेंगे, जब हृदय में बसी हुई अमृत की कुपी जब उसको टेढ़ा करके अमृत को खाली कर देंगे ना, तो फिर भगवान उनके हृदय में अमृत की डिबिया को खाली कर देते हैं गिरा कर, तब रावण गिर जाता है। और जब आकाश से गिरता है जय श्री राम करके गिर जाता है, क्योंकि वो कौन थे, ये जय और विजय थे, ये स्वर्ग में वैकुंठ में विष्णु के द्वारपाल थे जय और विजय, और चार छोटे से बालक थे, हाँ, सनत कुमार, सनंदन, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे, 4 साल के थे वो, लेकिन वो बड़े हजारों लाखों साल के ऋषि थे, वो अपने योग के बल से उन्होंने अपने शरीर को 4 साल का ही रखा था, उसके ऊपर बढ़ने नहीं दिया। वो जब गए दर वैकुंठ में भगवान विष्णु को मिलने के लिए, तो द्वारपाल थे जय और विजय, उन्होंने देखा ए बच्चे लोग कहाँ जा रहे, रुको यहाँ से, चलो भागो यहाँ से, ये विष्णु का दरबार है, कोई खेलने की चीज ग्राउंड नहीं है खेलने का। उनको पहचान नहीं पाए वो कि लाखों साल के उम्र के ये ऋषि है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने मोबाइल की ट्यून है ना ट्यून, वो भगवान के नाम की होनी चाहिए, क्योंकि जब भी बजेगी तो भगवान के नाम का याद आएगा। ऐसा कुछ बजेगा तो आपको वही याद आएगा ना जो बज रहा है, कौन से पिक्चर का है और कहाँ पर कौन से सीन में बजाया गया था, उस सीन का याद आएगा ना आपको। तो भगवान का भक्त जो होता है वो हर जगह ऐसी व्यवस्था करके रखता है कि आपको भगवान की याद आए। हमारे हॉस्पिटल में जब ट्यून बजती है ना, नमस्ते नरसिंहाय, फिर वो कोई महाराज जी गा रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र, वो सब सुनाई पड़ता है, तुरंत उसकी याद आती है, अरे महाराज जी हरे कृष्ण मंत्र गा रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो वो चार बालक जब लाखों साल के उम्र के थे वो, लेकिन चार साल की उम्र को देखकर वो पहचान नहीं पाया, उसको रोक लिया उन्होंने, तो उन्होंने शाप दिया उनको, तुमको हम शाप देते हैं कि तुम पृथ्वी पर जाकर जन्म लोगे। पहले कहा कि सात बार जन्म लोगे, उनका सात बार तो बहुत लंबी चीज है, पता नहीं कितना साल लगेगा उसके लिए, कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या? दिवाली का समय है, कुछ डिस्काउंट दे दो। तो उन्हें कहा कि सात बार आम आदमी भक्त बनने के बजाय तीन बार तुमको राक्षस बन के जाना होगा। बोला अगर कम समय लगे ना उसके, तीन बार में हो जाएगा ना, तो बोले ठीक है। तो वो जय और विजय सबसे पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनकर आए सत्ययुग में, और वराहदेव ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। फिर दूसरे युग में यही लोग रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, वो दोनों तो भगवान के भक्त थे वो, लेकिन शाप के लिए आए थे वो। और ये जब एक और बात बताना भूल गया आपको मैं, कि जब ये शाप दिया ना उन्होंने कि तुम राक्षस बन के जाओगे नीचे, विष्णु जी भाग के आए वहां पर। अरे क्या हो रहा है गेट पर, मेरे गेट पर अशांति क्यों है, क्या वो कह रहा है, शाप वाप क्यों दिए जा रहे हैं? तो वो विष्णु जी आकर इन चार बालकों की माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि कुछ भी हो, ये मेरे द्वारपाल है ना, मेरे द्वारपाल की तरफ से आपका अपराध हुआ है तो मैं जिम्मेदार हूं उसके लिए, उन्होंने जो गलत व्यवहार किया है उसका मैं जिम्मेदार हूं, इसलिए माफी चाहता हूं आपकी। तो फिर वो जाते हैं नीचे। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा उन्हें शाप क्यों दिलवाया आपने, वहां पर क्यों बोला नहीं कि भाई माफ कर दो इनको, सॉरी बोलो और कैंसिल कर दो शाप आपका। लेकिन भगवान का ऐसा है ना, वैकुंठ में वो कुश्ती नहीं खेल सकते किसी के साथ, सब लोग प्रेम करते हैं उनसे। हाँ, जब प्रेम भगवान को युद्ध करने का और युद्ध करने का और वध करने का भी ऐसा वीर रस भी उनके अंदर है, तो वैकुंठ में वीर रस पूरा नहीं होता है उनका। तो अपने ही भक्तों को ऐसा शाप वाप देके पृथ्वी पर भेजते हैं, वो राक्षस बनकर आते हैं और ये भी पृथ्वी पर जाते हैं और उनके हाथ में सच्चा युद्ध करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा युद्ध करते हैं और युद्ध का आनंद लेते हैं। तो ये रावण और कुंभकर्ण भगवान के भक्त थे, लेकिन वो राक्षस बनकर भगवान के लिए ऐसा ड्रामा किया उन्होंने कि हम लोग उनका द्वेष करते हैं, उनका आतंक मचाते हैं, देवताओं को त्रस्त कर देते हैं। तो देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान के डोंट वरी, मैं भी राम के रूप में आऊँगा और रावण का वध कर दूंगा, क्योंकि रावण कुंभकर्ण ने पृथ्वी पर बहुत बड़ा हाहाकार मचा दिया था। तो जब इसलिए जब रावण जीवन भर कहता रहा कि मेरे सामने प्रभु को श्री करके मत पुकारो, आदर सहित मत पुकारो मेरे शत्रु को, वही राम को द्वेष करने वाला रावण जब उसके हृदय पर बाण लगता है तो वो जय श्री राम करते हुए मर जाता है। सबको आश्चर्य होता है ऐसे कैसे हो गया, लेकिन वो भक्त है भगवान का। लेकिन वो भगवान की लीला को संपन्न करने के लिए, जैसे हमारा ड्रामा होता है ना, तो कभी कभी बच्चे अच्छे लोग भी विलन का रोल करते हैं। हमारे डॉक्टर दलाल ने एक बार भयंकर कंस का रोल किया था, एकदम जोरदार। आपके लिए डॉक्टर दलाल कितने साधु लगते हैं देखने से, लेकिन कंस के रूप में ऐसा बालक को पटक पटक के मार रहे दुष्ट जैसे, एकदम रोल कर रहे हो, सच्चे में राक्षस नहीं हो, नाटक में कंस का रोल कर रहे हैं। उसी तरह से वो बहुत जैसे सच्चा लगे आपको ऐसा रोल करते हैं रावण का, हृदय से भक्त है भगवान। लेकिन प्रभु रामचंद्र जो है सब पर कृपा करते हैं, उनके सामने जो भी मरे, उनके बाण से मरे या उनके सामने मरे, वो सबको अयोध्या प्राप्त हुआ, सबको, राक्षस हो या कुछ भी हो, क्योंकि भगवान के हाथ से मर जाना या वध होना ये बहुत भाग्य की बात है। रावण जैसे महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान ने किसी को नहीं मारा, सब अर्जुन ने, भीम ने, सब ने मारा, लेकिन भगवान के आंखों के सामने जितने लोगों की मृत्यु हुई वो सब लोग वैकुंठ को प्राप्त कर लिए। ये भगवान की उपस्थिति का शक्ति है। फिर तो उसके बाद में फिर भगवान ने सीता जी को लेकर वो आए, लेकिन सीता जी को लेकर अयोध्या जाने के पहले विभीषण का राज्याभिषेक किया, अच्छी पत्नी मिल गई तो खुश हो गए, भूल गए वादा वादा जो किया था पहले, कुछ नहीं, उनको लेकर अयोध्या जाने के पहले उन्होंने उसका राज्याभिषेक किया, राज्य जो था पूरा अर्पण किया उसे। प्रभु रामचंद्र ने कहा कि वो तो कह रहे थे अरे प्रभु जी आप कहाँ जा रहे हैं, ये राज्य आपका है मेरा नहीं है, मैं तो ऐसा ही सर्वेंट हूँ आपका, आप रहो मेरे साथ में यहाँ पर, आप हो तो यह राज्य में कोई मतलब है, तो रावण के राज्य में क्या मतलब है। तो प्रभु जी ने कहा कि मैं यहाँ पर और विश्राम करूंगा, लेकिन मेरी नजर आपके राज्य पर रहेगी और वहीं से आपके राज्य को देखता रहूंगा और मेरे निहारने से आपका राज्य सुरक्षित रहेगा। तो ये रंगनाथ की मूर्ति थी ना, वो अयोध्या से आई थी, अयोध्या से दिया था रघु राजा को, दिया था रघु राजा ने, फिर दशरथ राजा के पास में आया, तो जब ये हुआ तो उन्होंने वो मूर्ति वहां से मंगाया और हो गया ये, तो उसको दे दिया। किसको दिया? विभीषण को। तो वो लेके जा रहे थे लंका तक, तो वहीं पर वो रुक गए, उसको उठा नहीं पाया आगे वो। तो उन्होंने कहा प्रभु आप आए नहीं मेरे साथ में, आपने वादा कर दिया आप लंका आएंगे, आप खुद नहीं आएंगे तो आपकी मूर्ति आएगी। तो उन्होंने कहा नहीं मैं यहीं रहूंगा। कहाँ पर? रामेश्वर में, और श्रीरंगम पास में है ना, उधर श्री रंगनाथ जी के रूप में रहूंगा, मेरी दृष्टि जो है वो आपके लंका पर रहेगी, मेरा हाथ भी आशीर्वाद का जो है वो आपकी ओर रहेगा, ऐसे एक हाथ ऐसे रहेगा सर के पास, एक हाथ ऐसे रहेगा। तो ये कथा है उनकी। भगवान फिर वहाँ पर रंगनाथ के रूप में रहे भारत में ही, और वो फिर वो लंका में चले गए और भगवान फिर अयोध्या चले गए, ऐसे प्रभु रामचंद्र की कथा है। शास्त्र में लिखा है कि प्रभु रामचंद्र की जो कथा है, जो प्रेम से और श्रद्धा से सुनेगा वो इसी जन्म में सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा और इस जन्म के अंत में भगवान के धाम में पहुंच जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम सबको बधाई हो, हम सब लोगों ने बहुत शांति से, प्रेम से, श्रद्धा से प्रभु की कहानी सुनी। अगले मंगलवार को भी सुनाएंगे प्रभु की कहानी, और प्रभु रामचंद्र की कहानी सब लोगों को अच्छी लगती है, इसमें कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी है। कृष्ण की कहानी सुनेंगे थोड़ा सा गड़बड़ है, बोले अरे ऐसे कैसे किया उन्होंने, रात में नाच किया इतने औरतों के साथ में, अच्छा नहीं किया उन्होंने, अरे ऐसे कैसे किया, वो भगवान है लेकिन माखन चोरी करते हैं, इसके घर में जाते हैं उसके घर में जाते हैं, और माखन चोरी नहीं मिला करने को तो किसी के बच्चे के कान में पानी डाल देते हैं, किसी को चिमटा निकालते हैं, कैसे भगवान है ये, पता नहीं क्या है, तो भगवान है कि क्या है, तो बालक है, आम आदमी जैसा बालक है, कोई बड़ी बात नहीं भगवान बात। अरे उसको बड़े होने के बाद में और गड़बड़ किया, द्वारका में गए 16,108 समझने के लिए कोई आदमी चाहिए समझाने के लिए, वही इसका मतलब ये है, तब आप समझ पाओगे। लेकिन राम की कथा में कोई ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, जो कथा इस रेल है वैसे कहा गया है कि पहले हमको राम की कथा सुंदर करना चाहिए, फिर वो सुधर के योग्य हो गए तो कृष्ण की कथा सुनने का प्रयास करना चाहिए। पति के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक पिता के रूप में, सबके रूप में कैसे व्यवहार करना चाहिए, उसका आदर्श जो है आपको पता करना है कि क्या करना है, तो रामायण पढ़ना चाहिए। रामायण पढ़ने से एक इंसान के रूप में कैसे जीना चाहिए आसानी से समझ में आएगा, एकदम इजीली समझ में आएगा। इसलिए अभी हम अगले 2-3 मंगलवार को आप आइए सब लोग, हम प्रभु रामचंद्र की गिनी चुनी लीलाओं को वर्णन करेंगे। पूरा रामायण पढ़ना तो 2 घंटे में मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु रामचंद्र के दिव्य जो गुण है वो कथाओं के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बोलो प्रभु रामचंद्र की, सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, श्री अयोध्या धाम की, श्री रामनवमी महामहोत्सव की, बताइए गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।